blessed Savior. Om Namah Siddhaya. Om Namah Siddhaya. Om Shuddhatmane Namah. Namo Arihantanam. Namo Siddhanam. Namo Ayariyanam. Namo Vachayanam. Namo Loe Savasahunam. Nithaviyartakamam. Viram Namiyunapatta Savartam. Anubhagasya vihattim jaho vai samparu vema.
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुड़ तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। पांचवी पुस्तक जो अर्थाधिकार है अनुभाग विभक्ति नाम का, उसमें भी हम 92 पृष्ठ पर आ गए हैं, 92। आज नया विषय शुरू होगा अनुभाग विभक्ति में ही, भुजगार विभक्ति वाला। बढ़ते हम भुजगार विभक्ति। भुजगार विभक्ति में ये 13 अनुयोग द्वार जानने योग्य हैं। अभी हमने 23 देखे थे, मूल प्रकृति के अनुभाग विभक्ति में हमने 23 अनुयोग द्वार देखे थे। अब ये बताते हैं समुत्कीर्तना से लेकर, समुत्कीर्तना इन्हें है इतना ही बताएंगे, उसको समुत्कीर्तना कहेंगे। समुत्कीर्तना से लेकर अल्प बहुत्व पर्यंत, उनमें से समुत्कीर्तनानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मौनीय कर्म की, अभी यहां बातें इतनी है कि भुजगार है, भुजगार यानी बढ़ता हुआ अनुभव, अल्पतर यानी घटता हुआ, और अवस्थित यानी उतना का उतना रहना। तो पहले बताएंगे ये हो सकता है या नहीं है। तो कहते ओघ से मोहनीय कर्म की भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव है इतना बताए, उनकी सत्ता है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य और सब देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि आनत स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में अल्पतर और अवस्थित विभक्ति वाले जीव है, क्योंकि भुजगार तो वे ही करेंगे जो अधिक बंद करेंगे। आनत और ग्रेवेक, आनत से लेकर ग्रेवेक तक तो मिथ्या दृष्टि है, फिर भी वहां शुक्ल लेशा है, वो बढ़ता हुआ अनुभाग का बंधन नहीं करेंगे तो वहां भुजगार भी नहीं होगा। हो सकता है उतना का उतना रहे या अल्पतर हो जाए क्रिया के कारण। इस प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। जानकर यानी जिसमें वो भुजगार नहीं हो सकता वहां, वो जानकर ले जाना चाहिए। जैसे सम्यक दृष्टि है तो उसमें भुजगार तो नहीं होगा, संयत है, तो वो बात आएगी आगे। विशेषार्थ जो जीव सत्ता में स्थित मोहनीय के अनुभाग को बढ़ाते हैं वे भुजगार विभक्ति वाले कहे जाते हैं। जो घटाते हैं वे अल्पतर विभक्ति वाले कहे जाते हैं। सत्ता का अनुभाग की बात चल रही, उदय रूप नहीं, क्योंकि उदय का अनुभाग तो घटाते हुए बहुत जगह पाया जाएगा, परंतु ये सत्ता की बात है। और जिनके मुंह का अनुभाग तदवस्थ रहता है, तद अवस्था ने उतना का उतना, न घटता है न बढ़ता है, वे अवस्थित विभक्ति वाले जीव कहे जाते हैं। ओघ से और आदेश से तीनों ही विभक्ति वाले जीव पाए जाते हैं, किंतु आनत से लेकर सर्वार सिद्धि विमान पर्यंत भुजगार विभक्ति वाले देव नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहां मोह के जिस अनुभाग को लेकर जीव उत्पन्न होते हैं उसमें वृद्धि नहीं होती। हो सकता है उतना ही रहे या अल्पतर भी हो जाए किसी के। ये तो आसान है ना। अब स्वामित्व अनुगम, ये अनुगम दो नंबर का अनुगम है। ये भुजगार के, अल्पतर के और अवस्थित के स्वामी जीव कौन है उसको यहाँ बता रहे हैं। तो स्वामित्व अनुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। उनमें से ओघ से मौन्य कर्म की भुजगार विभक्ति किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। भुजगार में मिथ्या दृष्टि होना आवश्यक है तो ही जो है अनुभाग सत्ता में उससे बढ़कर बांधेगा। अल्पतर और अवस्थित विभक्ति किसके होती है? किसी भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जीव के होती है। अल्पतर मिथ्या दृष्टि के नहीं होती वो बात नहीं है, परंतु भुजगार तो मिथ्या दृष्टि के ही होती है। और अल्पतर और अवस्थित मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को भी हो सकता है। इसी प्रकार सब नारकी, सब तिर्यंच, सब मनुष्य, सामान्य देव और भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्ग तक के देवों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजकार अल्पतर भुजकार लिखा है, सब जगह भुजगार लिखा है। क्या कहते हैं, तिर्यंच अपर्याप्तक और मनुष्य अपर्याप्तकों में भुजगार अल्पतर और अवस्थित विभक्ति किसके होती है? किसी भी मिथ्या दृष्टि जीव के होती है, क्योंकि वहां सम्य दृष्टि जीव होते ही नहीं है उस अवस्था में। आनत स्वर्ग से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में अल्पतर और अवस्थित विभक्ति किसके होती है? अब यह आनत से लेकर ग्रहवेग तक को अलग निकाला, पहले में पहले बताया था आनत से लेकर सर्वार सिद्धि तक के भुजगार नहीं होता, अल्पतर और अवस्थित होता है। अब आनत से लेकर ग्रहवेग तकों में जो होने वाले अल्पतर और अवस्थित है वो किसके हो गए? किसी भी सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के होती है, क्योंकि वहां मिथ्या दृष्टि भी पाए जाते हैं। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत मुनि कर्म की अल्पतर और अवस्थित विभक्ति किसके होती है? किसी भी सम्यक दृष्टि के होती है, वहां सम्य दृष्टि ही जीव होते हैं। इस प्रकार जानकर इन विभक्तियों के स्वामित्व को अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए, यानी कहां भुजगार होते हैं, कहां अल्पतर होती है। जैसे मैं पूछू आप, आहारक का योगी में क्या होगा, भुजगार होगा कि अल्पतर के अवस्थित? अवस्थित। अल्पतर हमने निषेक में देखा था, स्थिति एक एक समय घटती है, परंतु आहारक का योग में जिस अनुभाग से आया है उतना ही रहेगा, उसमें घटेगा नहीं, तो वहां अवस्थित कहेंगे। इसलिए जानकर कहना, वो आगे बात आएगी शायद। विशेषण, ओग से मोह की भुजगार विभक्ति का स्वामी तो मिथ्या दृष्टि ही होता है, किंतु अल्पतर और अवस्थित विभक्ति के स्वामी मिथ्या दृष्टि भी होते हैं और सम्यक दृष्टि भी होते हैं। अर्थात ओग से मोह के सत्ता में स्थित अनुभाग की वृद्धि तो मिथ्या दृष्टि ही करता है। सत्ता में स्थित अनुभाग की बात है ना यहाँ, उसी को अनुभाग विभक्ति कहा था। किंतु हानि और अवस्थान दोनों के हो सकते हैं, सम्यक दृष्टि के भी और मिथ्या दृष्टि के भी। इसी प्रकार आदेश से भी जानना चाहिए। विशेष यह है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्त में तीनों ही विभक्तियां मिथ्या दृष्टि के ही होती है, क्योंकि उनमें सम्यक्त्व नहीं होता। ये तो इतना आसान कारण है उसमें। तथा आनंद से लेकर नव ग्रहवेग तक के देवों में वृद्धि संभव न होने से वहां अल्पतर और अवस्थित पद का स्वामी मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि दोनों को कहा है। अनुदिश और अनुत्तरों में सब सम्यक्त्व ही होते हैं, अतः दोनों विभक्तियां सम्यक्त्व की के ही होते, सम्यक्त्व के ही होते हैं। इसी प्रकार अन्य मार्गणाओं में जान लेना चाहिए। अब तीसरा नंबर का अनुयोग चलेगा कालानुगम से। जब काल कहते हैं तो उससे क्या समझना चाहिए भानुबेन? हाँ, भुजगार का समय का अर्थ क्या है? हाँ, निरंतर बढ़ते रहना चाहिए हर समय। एक बार बढ़ा हुआ अनुभाग अंतर्मूर्त तक उत्कृष्ट रहता है, उसको तो अवस्थित कहेंगे। हमें लगातार बढ़ता हुआ अनुभाग चाहिए, उसको हम काल कहेंगे। भुजगार एक समय में भुजगार, दूसरे समय में भुजगार, तीसरे समय में भुजगार, चौथे समय, ऐसा हो सकता है कि नहीं? और होता है तो कितने काल तक, ये यहाँ प्रश्न है। तो कालानुगम से निर्देश दो प्रकार का है, ओघ और आदेश। ओघ से मुनि कर्म की भुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय के लिए वो भुजगार हुआ या अल्पतर हुआ, ये पॉसिबल है। और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, कितना कहा? अंतर्मूर्त तक हर समय बढ़ता हुआ अनुभाग बांध सकता है जी। घटता हुआ बांधने से घटेगा नहीं, घटता हुआ बांधने से कुछ घट नहीं होगी अनुभाग में, क्योंकि जो बंधा हुआ अनुभाग है वो कम बांधने से अनुभाग का घटना नहीं होता है। क्रिया होनी चाहिए, कौन सी क्रिया होनी चाहिए? बीज संयोजना में क्या होता है? अनुभाग कांडक घात होते हैं, तो एक समय के लिए होगा। कांडक के अंतिम समय में अनुभाग का घात होगा तो एक समय होगा। यहाँ क्या लिखा है? अंतर्मूर्त। क्यों? अंतर्मूर्त का अर्थ होता है हर समय अनुभाग का घटना होना चाहिए अंतर्मूर्त तक। श्रेणी में, क्षपणा में, चारित्र मोह की क्षपणा में ऐसा होता है। चारित्र मुनि की क्षपणा में अनुसमयापवर्तन, अनुसमय ने प्रति समय, अपवर्तन ने घाट होना, घट होना। किसमें? अनुभाग में प्रति समय वो घट होती चली जाती। सत्ता की भी हो, यहाँ सत्ता की बात चल रही है ना। उदय में तो प्रति समय घटकर उदय में आता है, वो तो हमने तो बहुत पहले भी देखा था, परंतु यहाँ सत्ता की बात है। तो ऐसा कब हो सकता है? चारित्र मोह की क्षपणा में ही हो सकता है। अन्यथा अनुभाग कांडक जहां होते हैं वहां तो एक समय के लिए, क्योंकि जब तक कांडक है, कांडक की कार्य चल रहा है, तब तक तो उतना का उतना अनुभाग। और जब कांडक घात हुआ तो एकदम एक समय के लिए ड्रॉप हो गया अनुभाग में। स्थिति में क्या होता था? कांडक चलता था तो एक एक निषेक तो गलता ही था, और कांडक के अंतिम समय में बहुत ज्यादा गलता था। अब यहाँ ऐसा नहीं है, अनुभाग उतना का उतना रहेगा और कांडक के अंतिम समय में ड्रॉप होगा। सत्ता में बात है ना, ये सत्ता की बात है। वृद्धि के लिए लगातार बंध, जितना बांधा उससे अनुभाग बढ़कर बांधा, उससे अनुभाग बढ़कर बांधा, उससे अनुभाग बढ़कर बांधा, और हर समय बढ़ता हुआ। परंतु उसके लिए भी लिमिट कितनी है? अंतर्मूर्त। उससे ज्यादा वो बढ़ता हुआ नहीं बांधेगा। अभी तो हम केवल अनुभाग की इतनी चर्चा की थी कि उत्कृष्ट अनुभाग कितने समय तक होगा, उत्कृष्ट वहां बढ़ते हुए की बात नहीं ली, उत्कृष्ट अनुभाग, मैक्सिमम पॉसिबल अनुभाग। एक समय में बंधा है तो अंतर्मूर्त में तो अनुत्कृष्ट होगा ही, उसकी बात हमने अभी तक देखी थी। अब यहाँ प्रकरण किसका चल रहा है? भुजगार, अल्पतर और अवस्थित का। भुजगार तभी होगा जब बढ़ता हुआ बांधेगा तभी। अब लगातार भुजगार कब कहेंगे? हर समय बढ़ता हुआ बांधेगा तो। परंतु हर समय घटता हुआ बांधने से अनुभाग नहीं घटने वाला। अनुभाग तभी घटेगा या तो अनुभाग कांडक घात होता है, वो तो एक इंद्रिय आदि में भी होता है, वो नहीं होता वो नहीं, और क्रिया विशेष के कारण होता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में भी अल्पतर पाया जाता है, अभी हमने पढ़ा था। अवस्थित विभक्ति का कितना काल है? हमने क्या देखा? भुजगार और अल्पतर का जघन्य एक समय, और उत्कृष्ट अंतर्मूर्त। अवस्थित विभक्ति का कितना काल है? ये उत्कृष्ट काल जो अंतर्मूर्त कहा ना अल्पतर के लिए चारित्रमुखी क्षपणा में। भुजगार में तो बंद में होता है, यानी ये अंतर्मूर्त तक लगातार घटेगा तभी ये पॉसिबल है। देखो अवस्थित का भी पूछ रहे, जघन्य काल एक समय, क्योंकि एक समय के लिए उतना का उतना रहा, बाद में बढ़ा या घटाया। और उत्कृष्ट काल पल्ले के असंख्यात में भाग अधिक 163 सागर है। इतना लंबा काल उतना का उतना अनुभाग किसको होगा? हाँ, यानी वो भोगभूमि को भी लेना, वेदक सम्यक्तो का भी काल लेना और ग्रेवेक में भी भेजना। हाँ, वो विशेषार्थ में बताएंगे। सत्ता में स्थित अनुभाग को आगे के समय में बढ़कर या घटाकर पुनः तदवस्थ रह जाने से भुजाकार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय होता है। भुजाकार ये विशेषार्थ में बता रहे हैं। हाँ, भुजगार सब जगह लिखेंगे, भुजगार विभक्ति भुजगार ही होना चाहिए, पर भुजाकार इन्होंने हिंदी में लिख दिया है। भुजाकार ने बढ़ता हुआ, ये दोनों ही, मगर आगे उन्होंने ही भुजगार लिख दिया, यानी यहाँ भी भुजगार लिखना अच्छा है। क्या कहते हैं, एक समय के लिए बढ़ाया या घटाया और फिर उतना का उतना रहा, तो अल्पतर इनका जघन्य काल एक समय और लगातार प्रति समय बढ़ाते या घटाते जाने पर, ये बात महत्व की, प्रति समय बढ़ाते जाना। बढ़ाते जाने में तो हम प्रति समय बढ़ाता हुआ बांधा कह सकते, घटाते जाने में नहीं कह सकते। घटाता हुआ बंद करेंगे तो भी सत्ता का अनुभाग नहीं घटेगा, जो ऑलरेडी बंधा है वो उतना ही रहेगा। अनलेस कोई अनुभाग कांडक खात होता है तभी घटेगा, या जो अधिक अनुभाग के साथ एक इंद्रिया नीचे के जाति में जाता है उसके भी घटेगा। उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त होता है, इससे अधिक काल तक न भुजगार विभक्ति होती है और न अल्पतर विभक्ति, किंतु अवस्थित विभक्ति लगातार पल्ले के असंख्यात वे भाग से अधिक 163 सागर तक रह सकती है, क्योंकि किसी भोगभूमि या मनुष्य या तिर्यंच ने पल्लोपम के असंख्यात वे भाग आयु के शेष रहने पर प्रथमोपशम सम्यक तो प्राप्त करके अल्पतर किया, अल्पतर किया है उसने, और फिर अभी फिर मिथ्यात्व को प्राप्त हो गया। अल्पतर जितना उसने घटाया है और मिथ्यात्व में गया है और अवस्थित अनुभाग विभक्ति वाला हो गया, अब वहां वो अधिक बांधेगा नहीं। उत्कृष्ट का तो बंधन नहीं होता है वहां पर भोगभूमि में, तो यहां अधिक नहीं बांधेगा, मिथ्यात्व में ऐसा ही रहा उतने के साथ। आयु के अंत में वेदक सम्यक दृष्टि होकर 266 सागर तक वेदक सम्यक दृष्टि व सम्यक मिथ्या दृष्टि रहकर, क्यों एक बार 66 सागर होते होते लास्ट अंतर्मूर्त में सम्यक मिथ्यात्व में आया, फिर वेदक सम्यक दृष्टि हुआ, तीसरे से फिर चौथे में चला गया और फिर वहां पर 66 सागर तक रहा। पूरे 66 सागर नहीं लेना, पूरे हो जाते तो क्षायिक हो जाता है, तो उसके पहले पहले अंत में उपरिम ग्रेवेक में उत्पन्न होकर मिथ्यात्व को प्राप्त हुआ। अब ग्रेवेक में जाने पर मिथ्यात्व भी हो गया तो भी अधिक तो बंद नहीं करेगा, जितना है उतना रहेगा उसका, मिथ्यात्व ही रहा वो। वहां से चयकर मनुष्य हुआ, इस प्रकार अब फिर मनुष्य हुआ और बाद में उसने अधिक बांधा तो अवस्थित का अंत हो गया ना। इस प्रकार अवस्थित अनुभाग विभक्ति का पल्य का असंख्यातवा भाग अधिक 163 सागर काल प्राप्त होता है। कैसे 66, 66, 132 और ये 31 सागर और उसमें पल्ले का असंख्यातवा भाग। अब मार्गणाओं में बताएंगे आदेश से। नारकियों में भुजगार विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। नारकियों में भी प्रत्येक समय में बढ़ता हुआ बांधेगा कोई जीव तो अंतर्मूर्त तक भुजगार विभक्ति हो सकती है। बढ़ता हुआ। अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अभी ओघ में और इसमें क्या डिफरेंस है? ओघ में तो अंतर्मूर्त कहा था और यहाँ एक ही समय कहा। यहाँ एक समय तो घटित हो सकता है, क्यों? जब अनुभाग कांडक घात होता है तो एक समय के लिए अनुभाग घटेगा, लगातार अंतर्मूर्त तक नहीं घट सकता। ख्याल में आती बात? इसलिए यहाँ एक समय कहा। ओघ में यानी जिस मार्गणा में क्षपक श्रेणी होती है, जहां चारित्रमुख की क्षपणा होती है, वहीं पर ये अंतर्मूर्त तक लगातार घटना हो सकता है। यहाँ विषय चल रहा है बढ़ता हुआ उसको भुजगार कहते हैं, घटता हुआ उसको अल्पतर कहेंगे, उतना का उतना रहना उसको अवस्थित कहेंगे। अनुभाग की बात चल रही है। बढ़ता हुआ मात्र मिथ्या दृष्टि में ही होता है, घटता हुआ दोनों में होता है, सम्य दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अब शंका, नारकियों में अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट कार्य ने लगातार अल्पतर 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 होता रहे। 94 पेज पर पहली लाइन, नारकियों में अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त प्रमाण क्यों नहीं पाया जाता, प्रश्न है नहीं? क्योंकि ओग में तो हमने अंतर्मूर्त देखा था। समाधान, नहीं पाया जाता क्योंकि नारकियों में अनुभाग कांडक के बिना ओग के समान प्रति समय अपवर्तना के द्वारा अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है। ये प्रति समय अपवर्तन है ने जिसका नाम हमने देखा अनुसमयापवर्तन। अनुसमय ने प्रति समय, अपवर्तन ने अनुभाग का घात होना। अनुसमय अपवर्तन यानी अनुसमयापवर्तन, यहां उसी को लिखा प्रति समय अपवर्तना, उसके द्वारा अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है। जब चारित्रमुख की क्षपणा होती है तो प्रति समय अनुभाग घटता चला जाता है अनंत गुना। हाँ, इसलिए नारकियों में नहीं। हाँ? अपवर्तन नहीं घटना, अपवर्तन होने नहीं घटना। ये अपवर्तन शब्द और कहीं सुना है? निषेक में अपकर्षण होता है। हाँ, अनपवर्त्य आयु नाम सुना है? नहीं सुना। आयु में अनपवर्त्य आयु जिसका कदली घात नहीं होता है, इसे भोग भूमि और देवों को अनपवर्त्य आयु कहते हैं। यानी जिसको कदली घात नहीं होता, ऐसी जो आयु है असंख्यात वर्षों की आयु को अनपवर्त्य आयु कहते हैं। यानी उसमें घटना नहीं होता है, और जो कदली घात से जो मरते हैं उसके अपवर्त्य आयु कहते हैं। अपवर्तन यानी घटना, इसलिए वहां अंतर्मूर्त तक लगातार अल्पतर नहीं होगा। अल्पतर तो हो सकता है एक समय के लिए, और एक समय में अनुभाग कांडक का घात होता नहीं है। अनुभाग कांडक का घात होने के लिए कितने समय लगेंगे? अंतर्मूर्त यानी कांडक जिसको हम कहते हैं कि विशिष्ट अनुभाग है, तो विशिष्ट अनुभाग वाले कोई स्पर्धक है या वर्गणा जो कुछ है, तो उसमें कुछ परमाणुओं का अनुभाग घटा, दूसरे समय में और का घटा, तीसरे समय में और का, अभी ऊपर से नीचे निषेक तो नहीं आ रहे हैं। निषेक तो जहां है वहीं पर है, और जिन जिन निषेकों में अधिक अनुभाग था, जिस परमाणु, एक एक परमाणु की बात करेंगे, उस परमाणु, एक एक वर्गणा में अनेक परमाणु है ना, परमाणु वर्गणा किसको कहते हैं, समान अनुभाग वाले वर्गों के ने परमाणुओं के समूह को हम वर्गणा कहेंगे। तो कोई विशिष्ट वर्गणा है, उसमें बहुत सारे परमाणु हैं। इसमें कुछ परमाणु का अनुभाग घट गया, कांडक शुरू है ना, दूसरे समय और कुछ परमाणु का अनुभाग घट गया, तीसरे समय में और कुछ परमाणु का अनुभाग घट गया, ऐसे लगातार कितने समय तक चलेगा, अंतर्मुहूर्त तक, और लास्ट में जितने परमाणु हैं उनका भी अनुभाग घटेगा। तो यहाँ इतने अनुभाग वाले वहाँ स्पर्धक ही नहीं रहेंगे, तो क्या कहेंगे, घात हुआ। तब तक तो उतना अनुभाग वाले कुछ ना कुछ परमाणु तो थे ही, निशेकों में भी ऐसे देखते थे ना, एक फाली गिरी, दूसरी फाली गिरी, तीसरी फाली गिरी, परंतु वो फाली गिरते समय नीचे से एक एक निशेक भी जा रहा था। यह ऐसा नहीं है, अनुभाग में, सत्ता में जो अनुभाग वाले परमाणु है वो सत्ता में है ही, भले किसी भी निशेक में क्यों ना हो। तो सत्ता वाला अनुभाग जब घटता है, एक समय में, दो समय में, तीन समय में, अनुभाग कांडक घात के अंतिम समय में वो रिमेनिंग परमाणु का भी घात हो जाएगा और वो सारे के सारे नीचे वाले उसके समान हो जाएंगे। ख्याल में, अब आगे बढ़ेंगे। नहीं नहीं अनुभाग कांडक घात उपशम श्रेणी के टाइम में भी होता है, जहां जहां अपूर्वकरण अनंत अनुबंधी में भी होता है, तभी तो नरक में घटित हो रहा है। हाँ, एक अंतर्मूर्त है कांडक को करने के लिए, पर कांडक पूरा हुआ कब कहेंगे, एक समय लास्ट समय, उत्कीर्णा काल अंतर्मूर्त है, उत्कीर्णा ने अनुभाग घट रहा है, लगातार कुछ ना कुछ परमाणु उसमें से, उस स्पर्धक में से घट रहे हैं। अब अंतिम जो अनुभाग वाले ज्यादा थे वो लास्ट समय में उसका अनुभाग घटेगा, तो सत्ता वाला अनुभाग कब घटा कहेंगे हम, लास्ट समय में, कांडक घात के अंतिम समय में सत्ता का अनुभाग घटा। तब तक कुछ कुछ परमाणुओं का घट रहा था, परंतु उस उतनी अनुभाग वाले परमाणु तो थे ही थे। हाँ, उस स्पर्धक वाले परमाणु की संख्या कम होगी, उसको अनुभाग का उत्कीर्ण काल कहेंगे, परंतु उसका अनुभाग कांडक घात का जो अंतिम समय है वो अंतर्मूर्त का, तभी उन विशिष्ट परमाणुओं का अनुभाग घट गया। अभी उस पहले वाले अनुभाग वाले कोई परमाणु सत्ता में नहीं रहे, वो परमाणु तो रहे परंतु उनका अनुभाग घटा, परमाणु नष्ट नहीं हुए, ना ही खिर गए हैं, परंतु उनका अनुभाग जितना था उससे अभी कम हो गया है। तो ये कम होने का कार्य एक समय में हुआ, आखिरी समय में, अनुभाग कांडक घात के अंतिम समय में।
ये बढ़ती हुई विशुद्धि के साथ अनुभाग तो कम होता जा रहा है,
नहीं, बढ़ती हुई विशुद्धि के साथ नया अनुभाग का बंद भी कम होगा और अनुभाग का उदय भी कम होगा, उसकी बात ही यहाँ नहीं है। सत्ता में जो अनुभाग पड़ा है, पहले बांधा हुआ भी है, उसी की बात चल रही है। और ये केवल समय दृष्टि करते थे, मिथ्या दृष्टि भी करते हैं, अकेले प्रायोगिक लब्धि भी नहीं, कहीं भी होगा, एक इंद्रिय में भी होगा, पंचेंद्रिय का उत्कृष्ट अनुभाग लेके गया है, तो वहां भी उनके अनुभाग कांडक घात होंगे। अभी इनके स्वामित्व आएंगे ना, हम आगे आगे पढ़ेंगे, अभी तो हमने सामान्य से इन्फॉर्मेशन ली, आगे बढ़ेंगे। अभी यानी अनुभाग कांडक घात में प्रति समय कुछ परमाणुओं का अनुभाग घट रहा है, परंतु सत्ता में से वो अधिक अनुभाग नहीं घटा था, वो कांडक घात का जो अंतिम समय है उस समय वो सत्ता वाला अनुभाग कम हुआ। परमाणु तो है भी, वो छोड़ के नहीं गए।
देखो इस कदलीघात नहीं होता।
हाँ, असंख्यात आयु वाले जीवों में कदलीघात नहीं होता, नारकी है, देव है, भूभूमि के जीव है। देखो इसको हम पढ़ेंगे फिर से। शंका क्या थी? अल्पतर विभक्ति का नारकियों में लगातार अंतर्मूर्त क्यों नहीं बताया जैसे ओघ में बताया था? तो कहते ओघ में जो अल्पतर बताया, लगातार अल्प अल्प होना, अनुभाग प्रति समय घटना, ये तो क्षपक श्रेणी में चारित्र मौखिक क्षपणा में होता है। अन्यत्र सब जगह अनुभाग का घटना तो होता है पर एक ही समय के लिए। क्यों? अनुभाग कांडक घात जब होता है तो प्रति समय कुछ परमाणुओं का घात अनुभाग का घात होते होते अंतिम समय में उस अनुभाग वाले कोई परमाणु नहीं रहेंगे, सब वो कम अनुभाग वाले हो जाएंगे। तब अनुभाग कांडक घात के अंतिम समय में उस सत्ता में स्थित अनुभाग का घात हुआ ऐसा कहेंगे, तो उसका एक समय घटित होगा। 94 पेज पर हम पढ़ रहे हैं। देखो समाधान फिर पढ़ते हैं कि ये अल्पतर ने लगातार घटना प्रति समय घटना ऐसा नारकियों में संभव नहीं, क्योंकि नारकियों में अनुभाग कांडक के बिना ओघ के समान प्रति समय अपवर्तना के द्वारा अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है। इसके लिए हमने नाम देखा था अनुसमयापवर्तन, जो केवल क्षपणा में होता है लास्ट में, और एक समय में अनुभाग कांडक का घात होता नहीं है क्योंकि अनुभाग कांडक घात होने के लिए एक अंतर्मूर्त लगेगा और उसके अंतिम समय में घट एकदम ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि अनुभाग कांडक की उत्कीर्णा का उत्कीर्णाएं घात होते चले जाना जघन्य काल भी अंतर्मूर्त प्रमाण है। उसका उत्कीर्णा काल जो है, एक जो अंतर्मूर्त लगता है छोटे में छोटा भी अंतर्मूर्त जो है वो भी अंतर्मूर्त का है, छोटे में छोटा काल। शंका, बंध की अपेक्षा अल्पतर विभक्ति का निरंतर काल अंतर्मूर्त क्यों नहीं पाया जाता? हमने भुजगार में देखा था, बढ़ता हुआ एक एक समय में बढ़ता हुआ अनुभाग कोई जीव बांधता है तो भुजगार का तो अंतर्मूर्त घटित हुआ था, तो वैसे घटता हुआ अनुभाग बांधेगा तो अनुभाग को क्यों नहीं घटाया जाए, ये प्रश्न है। समाधान, नहीं, क्योंकि अनुभाग की सत्ता का प्रति समय घात हुए बिना, अनुभाग की सत्ता की बात चल रही है, बंधने के अनुभाग की यहाँ चर्चा नहीं है। अनुभाग बंध में नहीं लगा रहे हम, बंधने के बाद तो सत्ता में पड़ा रहता है जब तक घात नहीं होगा। तो अनुभाग की सत्ता का प्रति समय घात हुए बिना अल्पतर नहीं बन सकता, और नरक में प्रति समय घात होता नहीं है क्योंकि चारित्र मुह की क्षपणा में ही प्रति समय घात संभव है। अब ये बात क्लियर हुई? अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय, हमने अल्प भुजगार का अंतर्मूर्त देखा अधिक से अधिक, नारकियों में देख रहे, नारकियों में भुजगार विभक्ति का अनुभाग विभक्ति कम से कम हो तो एक समय, अधिक से अधिक लगातार हो तो अंतर्मूर्त, वहां बंध की अपेक्षा आती। अब घटने में अगर हम देखते अल्पतर में एक ही समय घटित हो सकता है, अधिक नहीं, क्योंकि वहां क्षपणा में ही संभव है। अब अवस्थित का बता रहे, अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। नारकियों में घटा रहे ना, ओग में कितना देखा था हमने?
163
सागर। हाँ, पल्ले का असंख्यातवा भाग प्लस 163 सागर। अब यहाँ कितना है? कुछ कम 33 सागर। लगातार अवस्थित उतना का उतना रहेगा, किसके रहेगा? समय दृष्टि के ही होगा, तो समय दृष्टि में उतना लगातार उतना का उतना रहना चाहिए। हाँ, देखो शंका, अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर क्यों नहीं है? पूरे 33 सागर लेना था ना, कहते नहीं, क्योंकि नारकियों में उत्पन्न होकर अंतर्मूर्त काल गए बिना सम्यक्त्व का ग्रहण संभव नहीं है। तो सम्यक्त्व का ग्रहण किया उसने और लगातार उतना का उतना अनुभाग रहा, उसमें अन्य कोई क्रिया उसने नहीं की, यानी अनंतानुबंधी विसंयोजन आदि कोई क्रिया नहीं की, तो जितना अनुभाग था उतना ही रहा। आप निषेक की बात कर रहे हैं या अनुभाग की बात है? अनुभाग में कोई सत्ता में पड़ा हुआ अनुभाग उतना ही रहेगा, अनलेस अनुभाग कांड घात किए तो ही वो घटेगा। ये निषेक और अनुभाग में बहुत, क्योंकि हम निषेक में तो प्रति समय एक एक निषेक घटता हुआ देखते थे, ऐसे अनुभाग में कुछ परिवर्तन नहीं होगा। जितने भी निषेक बाकी है उसमें उस अनुभाग वाले परमाणु कुछ ना कुछ वहां पड़े रहेंगे। क्रिया नहीं करने वाले नहीं, उत्कृष्ट कोई न करे तो कितने काल तक, क्रिया करने वालों को तो हम कहेंगे वो तो जघन्य में आ जाएंगे। सम्यक तो प्राप्त किया और अंतर्मूर्त में अनंतानुबंधी की विसंयोजना की तो हो सकता है। हाँ, कोई चेंज नहीं होगा। इसीलिए वो उत्कृष्ट काल लिया ना।
छठे नरक में पूरा काल तक हो सकता है।
छठे नरक में भी कोई सम्य दृष्टि उत्पन्न होता ही नहीं है, तीसरा भी नहीं, पहले ही में जाता है और वो क्षायिक सम्य दृष्टि होता है। दूसरे से लेकर सातवें नरक में जाने वाले जीव वहां जाने के एक अंतर्मूर्त पश्चात सम्यक तो ग्रहण कर सकते हैं। सभी नरकों में हम एक साथ हम डिसाइड करेंगे या थिंक हम विचार करेंगे तो सामान्य नारकी में अधिक से अधिक काल कितना होगा अवस्थित का, ये कुछ कम 33 साल। हर एक नरक को अलग अलग गिनेंगे हम तो उस नरक की स्थिति देखेंगे। शंका, मिथ्या दृष्टि में अवस्थित विभक्ति का काल 33 सागर प्रमाण क्यों नहीं ग्रहण किया? अब समय दृष्टि को छोड़ो ना, मिथ्या दृष्टि में ला वो तो मिथ्या तो में आया है, पूरे 33 सागर तक उसका उतना का उतना अनुभाग रखो। समाधान, नहीं, क्योंकि मिथ्या दृष्टियों में अवस्थित विभक्ति का काल अंतर्मूर्त है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि में अवस्थित नहीं होती वो बात नहीं है, अवस्थित भी यानी उत्कृष्ट है और उत्कृष्ट ही रहा, या अनुत्कृष्ट है अनुत्कृष्ट ही रहा, या जघन्य है ऐसा है तो उसमें कहते हैं। अभी जघन्य उत्कृष्ट की यहाँ बात नहीं, बढ़ाया हुआ और घटाया हुआ इतनी बात है। भुजगार और अल्पतर मिथ्या दृष्टि में भी हो सकता है, समय दृष्टि में भी हो सकता है, और उतना का उतना अंतर्मूर्त तक ही रहेगा, बाद में या तो बढ़ता हुआ या वो घटाएगा या बढ़ाएगा, कुछ ना कुछ होगा। वहाँ अंतर्मूर्त से ऊपर उनमें नियम से नियम बताए, भुजगार या अल्पतर विभक्ति का होना संभव है, अतः नरक में अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल 33 सागर नहीं कहा है। यानी वहां भी अल्पतर होता है, भले एक समय के लिए हो या अधिक हो अंतर्मूर्त के लिए, फिर भी वो घटना हो सकता है बढ़ना हो सकता है, परंतु लगातार अवस्थित अंतर्मूर्त से ज्यादा नहीं रहेगा। इसी प्रकार सब नारकियों में जानना चाहिए, किंतु इतनी विशेषता है उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। हर एक नरक की जो उत्कृष्ट आयु है उसमें कुछ कम कर देना। विशेषार्थ, आदेश से नारकियों में भुजगार विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यहाँ तो बंद की अपेक्षा आती है, किंतु अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल भी एक समय है और उत्कृष्ट काल भी एक समय है। भुजगार के समान अंतर्मूर्त नहीं है। इसका कारण यह है कि जब तक सत्ता में स्थित अनुभाग का प्रति समय घात न हो तब तक अल्पतर विभक्ति का काल अंतर्मूर्त नहीं बन सकता। यानी प्रति समय घात कहाँ होता है? क्षपणा में, चारित्र मौखिक क्षपणा में, और वहां अनुभाग का प्रति समय घात संभव नहीं है, वहां यानी नरक में, क्योंकि अनुभाग का प्रति समय घात चारित्र मौखिक क्षपणा में ही होता है। सारांश है कि कर्मों के अनुभाग को लेकर स्पर्धक रचना होती है। हमने शुरू में ही स्पर्धक रचना क्या है उसको देखा था बहुत विस्तार से, याद है? कर्म परमाणुओं को यहां वर्ग कहा, क्योंकि प्रत्येक परमाणु विशिष्ट अनुभाग है उससे युक्त होता है। जिनमें जिनमें समान अनुभाग है ऐसे वर्गों के समूह को वर्गणा कहा था। एक एक स्पर्धक में अनंत वर्गणा होती है। वर्गणा का अर्थ ही है एक वर्गणा यानी परमाणु का पुंज है। पहली नीचे की वर्गणा में मिनिमम अनुभाग है, उससे ऊपर की दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, तीसरे में और एक ज्यादा और एक ज्यादा और एक ज्यादा, ऐसे अनंत वर्गणा होती है, उनके समूह को स्पर्धक कहते हैं। अब ये हमने पहला स्पर्धक देखा तो उसके पहली वर्गणा में जितना अनुभाग था अविभाग प्रतिच्छेद उससे डबल दो गुना जिसमें होगे उस वर्गणा के वहां से लेकर दूसरा स्पर्धक होगा, जो जहां तीन गुना हो जाए वहां से लेकर तीसरा स्पर्धक, ऐसे स्पर्धक भी अनंत होते हैं। तो यहां कहते हैं कर्मों के अनुभाग को लेकर स्पर्धक रचना होती है। यह अनुभाग को बताने के लिए यह रचना है, हमें समझने के लिए। वहां कर्मों में कुछ ऐसा ढेर बनाते होंगे और ऊपर कम अनुभाग वाले ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम भी समझते थे ये निषेक रचना होती ना, तो नीचे के निषेकों में अनुभाग कम और ऊपर के निषेकों में अनुभाग ज्यादा, ऐसा नहीं है। उत्कृष्ट अनुभाग होगा परंतु सभी नया बंद भी हो रहा है ना, तो सब जगह होगे उत्कृष्ट अनुभाग कहीं भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि उत्कृष्ट वाले पड़े रहते हैं और जघन्य वाले, ये तो अनुभाग की जो उदय वगैरह है ना उसका अलग सारा तरीका है। निषेक नीचे का एक एक तो गलता ही रहेगा, परंतु एक बार अनुभाग बांधा है तो उसका घात हुए बिना वो कैसा होगा। घात तो होने से ही उसका सत्ता वाला अनुभाग कम होगा।
जो लास्ट निषेक में अनुभाग है वो पहले निषेक में भी अनुभाग
होगा ही, ऐसा नहीं। क्यों? उदय में जो है ना परिणामों के कारण वो उदय वाले पर अनुभाग में बदलते। जैसे हम अभी मोनी की बात छोड़ो, मति ज्ञानावरण की बात करेंगे। मति ज्ञानावरण का जो बंध होता है तो उसमें कौन कौन सा अनुभाग बनता है? लता दारू दो ही बनते है?
नहीं, चारों बनते है।
क्योंकि वो देशघाती प्रकृति है तो उसमें सर्वघाती स्पर्धक भी है और देशघाती भी स्पर्धक है। और उदय किसका चल रहा है?
देशघाती
का ही। तो ऐसा नहीं कहना कि नीचे के निषेकों में वो तो ऊपर के होते, ऐसा नहीं वहां कहते। उदय रूप जो है उसमें अलग उसके नियम है। यहाँ सत्ता की ही बात चल रही है। उदय कहाँ घटता है वो जो अलग बात है, वो अलग विषय है। इस विषय से तो थोड़े बाहर आए हम इतने तो समझ लेंगे पहले, बाद में उसमें माथा मारेंगे। कर्मों के अनुभाग को लेकर स्पर्धक रचना होती है। पहले जो हमने देखी थी वो निषेक रचना थी। यहाँ वो कहाँ पड़ा है उसकी बात भूल जाओ। विशिष्ट अनुभाग वाले परमाणु है, कुछ कम अनुभाग वाले है, कुछ अधिक अनुभाग वाले है। तो ये मंद से लेकर तीव्र तक वो सारे हम अलग अलग स्पर्धक बताएंगे तो उसको कहेंगे स्पर्धक रचना। इतनी बात ख्याल में आई? हाँ।
अनुपात कंडक घात होता है वो तो सभी निषेक में होगा, क्योंकि स्पर्धक तो सभी निषेक में अलग अलग अपने हैं।
अनुभाग कंडक घात सभी निषेकों में होगा। हाँ। तो भी सत्ता में जो उत्कृष्ट है उसी को उत्कृष्ट कहेंगे हम।
हाँ, वो तो बराबर है, पर सभी निषेकों में उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक नहीं हो सकते, ऐसा भी हो सकता है।
जहाँ जितना उत्कृष्ट है वो अपना अपना अनुभाग कम करेंगे।
यहाँ पे हम जो देखते हैं कि तो उत्कृष्ट अनुभाग वाला जो है वो उत्कृष्ट की अपेक्षा देख रहे हैं कि सभी स्पर्धक में जो सभी निषेक है उसमें सभी में उत्कृष्ट अनुभाग वाले स्पर्धक होंगे।
देखो, अनुभाग विभक्ति किसको कहेंगे? सत्ता में जो कोई उत्कृष्ट अनुभाग वाले परमाणु है। हाँ। सत्ता में अभी जो उत्कृष्ट है वो की अपेक्षा उत्कृष्ट की अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। सत्ता में जहाँ कहाँ भी अधिक अनुभाग वाले है उस अनुभाग का घटकर सत्ता में वैसा अनुभाग नहीं रहना उसको कहने हम अनुभाग का घात हुआ।
तो अनुभाग तो सभी जगह समान होगा ना, सभी निषेक में जो अनुभाग होगा तांडव घात होगा तभी एक समय में घट जाएगा, बाकी सभी सब, निषेक में सभी स्पर्धा को।
अभी उदय रूप निषेक की बात यहाँ छोड़ दो, अब वो अनुभाग वाले परमाणु कहाँ पड़े हैं उसका विचार अभी तो छोड़ दो, विचार करेंगे क्योंकि हम अभी तो भुजगार और अल्पतर देख रहे हैं। पहले तो हमने सामान्य से केवल वो अनुभाग होता है नहीं होता है इतनी बात की, अब लगातार की बात चल रही है। तो यहाँ जो स्पर्धक रचना है, देखो इसको समझेंगे तो और हम क्लैरिटी बढ़ेगी। वही उनका कि उनको ऐसा कहना है कि निषेकों की जो स्थिति की अपेक्षा है वही के निषेक, जो निषेक है उनकी स्थिति किसी के ऊपर है, कोई निषेक कम नीचे है ना, तो वहां ऊपर से नीचे परमाणु भी आते रहते हैं और अनुभागों में भी घटना चलता है। तो क्या नीचे के निषेकों में कम अनुभाग वाले और ऊपर के निषेकों में अधिक अनुभाग वाले ऐसा होगा क्या, ऐसा आपका प्रश्न है? तो उसमें भी ये होता है, बीच में अतिस्थापनावली वगैरह होगी उसमें नहीं जाएंगे और अन्य अन्य, परंतु वो अनुभाग का अनुभाग में बताएंगे, उसका निषेक के साथ संबंध नहीं बताएंगे। अनुभाग की रचना ही अलग समझो, जो हमने ऐसे ये अनुभाग अभी यहाँ स्थिति के साथ कंपेयर मत करो, ये अनुभाग की अपेक्षा ये स्पर्धक रचना है। अब इसमें क्या होता है उसको हम पहले देखेंगे। आउट ऑफ, परंतु इसको तो समझेंगे पहले, समझेंगे ना, ये समझ कर ये जो सारे प्रश्नों के उत्तर है ना, वो जब हम उपशम और क्षपणा का जो अपना वॉल्यूम आएगा उसमें इसके सारे सॉल्यूशन मिलेंगे यथा समय। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए, क्योंकि जो चालू विषय है उसको अधिक जिसको हमने कह दें डेप्थ से समझेंगे तो आगे के जो प्रश्न तो उठेंगे संभव है, परंतु वो यथा समय हम उसको समझेंगे। हाँ, सम्यक ज्ञान चंद्रिका में तो वो तो डायरेक्ट वो समझाते समझाते सब समझाए। हाँ, आपके पास सम्यक ज्ञान चंद्रिका है ना? हाँ, उसको पढ़ना पहले, क्योंकि वो तो समय उसकी पीठी का जो अभी उसमें कर्म की बात नहीं होगी। हाँ, इसमें नहीं होगा, उसमें लब्धिसार वाले प्रकरण में है। अभी इसको तो समझेंगे। हाँ, देखो ये तीसरी लाइन पढ़ रहे 95 पेज की, सारांश है कि कर्मों के अनुभाग को लेकर स्पर्धक रचना होती है। स्पर्धक रचना क्या है इसको तो समझे ना हम, ये स्पर्धकों की रचना है, अभी उसमें क्या समझाना चाहते हैं उसको देखेंगे। उसमें जो स्पर्धक बहुत अनुभाग वाले होते हैं उन सब स्पर्धकों में अनंत का भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्पर्धक आते हैं। उनमें से कुछ स्पर्धकों को छोड़कर शेष स्पर्धकों के परमाणुओं का एक भाग मात्र नीचे के स्पर्धकों में परिणमाया जाता है। अब यहाँ स्थिति की कोई विचार मत करो, केवल यहाँ ये नीचे वाले हैं वो मंद अनुभाग वाले हैं स्पर्धक और ऊपर वाले हैं वो तीव्र अनुभाग वाले हैं, वो कहाँ पड़े हैं उसका विचार छोड़ दो। अब यहाँ अनुभाग कांडक घात होता है यानी क्या होता है, तो ये जो सारे स्पर्धकों में तो वहां तो हम असंख्यात भाग वगैरह कहते थे निषेकों में, यहाँ अनंत भाग या अनंत गुणा ऐसा कहेंगे। तो यहाँ क्या कहा देखो, सब स्पर्धकों में अनंत का भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्पर्धक आते हैं। उनमें से कुछ स्पर्धकों को छोड़कर, अभी हम अनंत का भाग देंगे, ये अनंत वा भाग और ये अनंत बहुभाग, तो अनंत बहुभाग में से कुछ स्पर्धक छोड़कर क्या होता है, शेष स्पर्धकों के परमाणुओं का, अभी ये ऊपर इतने स्पर्धक है उनके परमाणुओं का एक भाग मात्र, इनमें सभी में से थोड़े थोड़े परमाणु, सभी स्पर्धकों के थोड़े थोड़े परमाणु नीचे के स्पर्धकों में परिणमाया जाता है। यानी इनका अनुभाग ऐसा घटता है कि वो नीचे के स्पर्धकों के समान हो जाता है। अर्थात कुछ परमाणुओं को पहले समय में परिणाम आते हैं, अब यहाँ उसको हम फाली कहेंगे। जैसे निशेकों में हम देखते थे, पहले समय में कुछ परमाणुओं को ऐसा परिणाम आया, दूसरे समय में और कुछ परमाणुओं को अनुभाग घटाया, अनुभाग घटने पर उनको नीचे के स्पर्धकों में हम दिखाएंगे, और अनुभाग घटेगा कुछ परमाणुओं का वो भी नीचे आएंगे, तो ये कब तक चलता रहेगा? अनुभाग कांडक घात का जो उत्कीर्णा काल है तब तक। अर्थात कुछ परमाणुओं को पहले समय में परिणाम आते हैं, कुछ को दूसरे समय में परिणाम आते हैं। 95 पेज पर चल रही अपनी बात, सातवीं लाइन अभी अंत में आए। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल के द्वारा सब परमाणुओं को परिणमा कर उन ऊपर के स्पर्धकों का अभाव किया जाता है। ये ऊपर के स्पर्धक मिट जाते हैं, मिट जाते हैं ना, इतने अनुभाग वाले वहाँ परमाणु नहीं पाए जाते। उन सभी परमाणु सत्ता में तो रहे, परंतु उनका अनुभाग नीचे के स्पर्धकों के समान हो गया। ये बीच में छोड़े थे ना, इसको अतिस्थापनावली कहेंगे, अभी आवली नहीं कहेंगे, अतिस्थापना कहेंगे, क्योंकि आवली तो काल में गिनेंगे हम। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल अतिस्थापना कहेंगे उसको, हाँ, इसके समान नहीं करेंगे, इसके जो बीच वाले हैं ना, इनमें से इनमें नहीं जाएंगे और घटकर नीचे जाएंगे। वैसे गिनो तो अपने अपने नीचे का छोड़कर सभी के नीचे के उसमें जाएंगे, यानी सबका अनुभाग घटता चला जाएगा, परमाणुओं का अनुभाग घटेगा। सत्ता में जो अधिक अनुभाग वाले हैं, अभी वो सत्ता में अधिक अनुभाग वाले नहीं रहेंगे। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका नाम कांडक घात है। यहाँ अनुभाग कांडक घात की बात चल रही है, बार बार वो अनुभाग लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना विषय ही अनुभाग विभक्ति का चल रहा है। इस प्रकार यद्यपि कांडक घात में प्रति समय अनुभाग का घात होता है, पर वह फाली रूप से ही होता है। क्या कहना चाहते हैं? हमने देखा ना, पहले समय में कुछ का घात हुआ, दूसरे समय में घात हुआ, तीसरे समय में घात हुआ, परंतु वो स्पर्धकों का अभाव नहीं हुआ। स्पर्धक तो वैसे ही वहां पर थे, उनकी वर्गणाएं भी थी, उसमें से कुछ परमाणुओं का अनुभाग घटकर वो नीचे के स्पर्धकों के समान हो गया, परंतु वहां परमाणु भी बने रहे और स्पर्धक भी बने रहे। उन स्पर्धकों का अभाव कब होगा? कांडक घात के अंतिम समय में, जब लास्ट फाली उसको हम कहते हैं, उसका जब अनुभाग घटेगा तब हम कहेंगे कांडक घात पूरा हुआ। तब तक कांडक घात चल रहा था, अंतिम समय में कांडक घात हम कहेंगे पूरा हुआ। तो कहते हैं यद्यपि कांडक घात में प्रति समय अनुभाग का घात होता है, पर वह फाली रूप से ही होता है, यानी कुछ परमाणु में ही होता है। इसलिए कांडक घात के काल में अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है। अल्पतर ने घट जाना, सत्ता का घटना, अनुभाग का सत्ता में तो है वो, जब तक अंतिम समय नहीं होता है कांडक का तब तक सत्ता में से घटा नहीं है, खाली रूप से घटा है। कहते इसलिए कांडक घात के काल में अल्पतर विभक्ति संभव नहीं है। वह यहां अंतर्मूर्त के अंतिम समय में ही होती है। कौन सा अंतर्मूर्त? यहाँ पर कांडक घात का अनुभाग, कांडक घात का जो काल है, उत्कीर्णा काल कहते हैं उसको, उस अंतर्मूर्त के अंतिम समय में ये सारे जो लास्ट वाला जो परमाणु उसके भी खाली रूप से हो जाएगा, और फिर इतने स्पर्धकों का नाश हो जाएगा, उसको कहेंगे कांडक हुआ। तो उसके अंतिम समय में ही अनुभाग का घटना होगा। अतः न केवल नारकियों में किंतु जिन मार्गणाओं में, वो ग के ऊपर रफा देना, जिन मार्गणाओं में चारित्रमों की क्षपणा नहीं होती, देखो चारित्र मौखिक सपना में ही प्रति समय घटना 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 चलता है, अन्यत्र अनुभाग कांडक के अंतिम समय में, कांडक घात का अंतिम समय में ही घटना होता है। तो जिन मार्गणाओं में चारित्र मौखिक सपना नहीं होती उन सब में अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय ही होता है, यानी एक समय से लगातार दो समय ज्यादा समय ऐसा अंतर्मुहूर्त तक होता रहे ऐसा नहीं होता। नारकियों में अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय, जितना है अनुभाग उतना ही रहना उसका जघन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर है। वो मिथ्यात्व अवस्था में नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्यात्व दृष्टि जीव के लगातार अवस्थित जो है अनुभाग अंतर्मुहूर्त से अधिक अवस्थित नहीं रह सकता। तो यहाँ जो कुछ कम 33 सागर है वो वहां जाकर सम्यक तो प्राप्त करने वाले जीव की अपेक्षा है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त से अधिक काल तक अवस्थित पना सम्यक दृष्टि के ही बन सकता है। और नरक में सम्यक दृष्टि का काल अधिक से अधिक आदि और अंत के 3-3 अंतर्मुहूर्त कम, तैतीस सागर होता है। एक अंतर्मुहूर्त पर्याप्ति पूरी होने के लिए, एक अंतर्मुहूर्त विशुद्ध होने के लिए, और एक अंतर्मुहूर्त वो सम्यक तो प्राप्ति का जो कोई है। नहीं, यहाँ विश्राम नहीं होता, ये विश्राम क्षपणा में होता है। वहाँ तीन बार करण होते हैं, उसमें बीच में विश्राम बताया, यहाँ नहीं।
और अंत में भी
तीन अंतर्मूर्त इसलिए बताया अंत में, सातवें नरक में पहले वो मिथ्यात्व में चला जाता है, अंतर्मूर्त रुकता है, बाद में आयु का बंद करता है, वो भी अंतर्मूर्त चलता है, और आयु का बंद होने के बाद फिर अंतर्मुहूर्त तो विश्रांति लेगा ना, वो अभी नरक छोड़ना है तो गाय क्यों करनी आयु बंद के बाद पर्याय इमीडिएट नहीं छूटती किसी की, अंतर्मुहूर्त तो चला जाएगा और फिर वहां पर हाँ, इसलिए तीन अंतर्मुहूर्त मिथ्यात्व में आया, एक अंतर्मुहूर्त तक रहा फिर आयु का बंद किया उसका अंतर्मुहूर्त, और फिर अंतर्मुहूर्त के बाद मरण होगा। तो तीन अंतर्मूर्त लास्ट में भी छोड़े, और देखो समय दृष्टि से मिथ्यात्व में आया है जीव, ऐसा जीव लेना है कि जो 33 सागर में कुछ कम तो सम्यक्त्व में रहा है, तो लास्ट में वो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में आने पर एक अंतर्मूर्त के पहले आयु का बंद नहीं करेगा, फिर आयु का बंद करेगा, आयु बंद भी कभी एक दो समय में नहीं होता, अंतर्मूर्त तो लगता ही एक आध, और फिर आयु बंधने के पश्चात आयु का बंधन भी रुक गया, अंतर्मुहूर्त बीत जाएगा फिर मरण होगा। इसका अर्थ क्या, शुरू में पर्याप्ति पूरी होने के लिए एक अंतर्मुहूर्त, फिर विशुद्धि हुआ, उस विशुद्ध हुआ ना विशुद्धि का एक अंतर्मुहूर्त, और सम्यक तो प्राप्ति का जो है वो अंतर्मुहूर्त। हाँ, वही पर्याप्ति पूरी होने का एक अंतर्मुहूर्त, विशुद्धि का एक अंतर्मुहूर्त, और सम्यक्त्व का एक अंतर्मुहूर्त, सम्यक्त्व प्राप्ति का, यानी वो कोई उसके कारण लग दी जाए कुछ करना है हमको, वो आदि के तीन अंतर्मुहूर्त। इस प्रकार प्रत्येक नरक में जानना चाहिए, अंतर केवल इतना है कि प्रत्येक नरक में अन्य विभक्तियों का काल तो सामान्य नारकी के समान ही है। अन्य विभक्तियों का काल यानी क्या, भुजगार का एक समय से लेकर अंतर्मुहूर्त तक, अल्पतर एक समय, और अवस्थित मिथ्या दृष्टि में अंतर्मुहूर्त, केवल अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल, जघन्य काल तो एक समय भी होता है और उत्कृष्ट काल कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण होता है, और यह अपनी अपनी स्थिति प्रमाण वो सम्यक दृष्टि के ही होगी। उस विशिष्ट नरक में उत्पन्न हुआ वो तीनों अंतर्मूर्त मिलकर भी हम अंतर्मूर्त कहेंगे। अंतर्मूर्त में सम्यक दृष्टि हुआ और जाके वो अंत तक सम्यक दृष्टि रहा। सातवें नरक में तो उसको हमने मिथ्यात्व में लाया है, अन्यत्र मिथ्यात्व में लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सम्यक्तों के साथ नरक से ऊपर मनुष्यों में उत्पन्न हुआ होगा। सम्यक्तों के साथ कोई नारकी तीर्यंचों में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ नहीं आता, इम्पॉसिबल। बहुत अच्छा। अभी आगे का पढ़ेंगे हम। नारकी की बात ख्याल में आई थोड़ी बहुत? ख्याल में आई कि नहीं देखना, याद है कि नहीं वो उसकी चिंता मत करना। हाँ, तिरियंचों में भुजगार विभक्ति का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है। अन्यत्र भी हमने ऐसा ही देखा था। अल्पतर विभक्ति का जगन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। यहाँ भी कोई चारित्र मौखिक सपना नहीं है। तो जैसे नारकी में हमने डिस्कस किया था, इनमें तो अनुवाक कांड घात होगा, सम्यक्त की प्राप्ति में, अनंतानुबंधी की विषय योजना में आदि में। अवस्थित विभक्ति का जगन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पल्य है, तिर्यंच के रहते हुए। हाँ
क्या कुछ अधिक नहीं, जो आगे का भव में सम्यक तो प्राप्त किया वो अपेक्षा लेना
है। आगे के भव में सम्यक तो प्राप्त किया तो क्या हुआ?
तो अवस्थित हो जाएगा जो कुछ अधिक पता है तीन पल्य में।
हाँ तो हो, घटित होगा ना कि नहीं होगा?
होगा, मैं पूछ रहा हूँ।
हाँ तो क्षायिक होना चाहिए।
हाँ क्षायिक का,
क्षायिक के साथ आया है। हाँ वो नहीं लिया उसने, ये नहीं। जैसे हमने देव ऊपर के देवों में देखा ना कि अनुभाग उतना का उतना रह सकता है, उसमें घट नहीं होगी, वैसे यहाँ लिया। देखो विशेषार्थ में पढ़ेंगे हम, निकालो विशेषार्थ 96 पेज। देखो कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच समय दृष्टि नहीं बनाया उसका। देखो क्योंकि क्षायिक के साथ यहाँ साधिक लेना है ना, अगर क्षायिक के साथ जन्मता है तो क्या होगा?
पहले आयु का बंद करेगा, पीछे क्षायिक होगा।
क्षायिक होगा तभी वो मनुष्य था, हमको तिरिंच में घटित करना है। ख्याल में है? तो काल घटेगा उसका, जब उत्पन्न होगा तब हम कहेंगे। तिर्यंच की आयु जब उत्पन्न हुआ तब से गिनेंगे। यहाँ साधिक तीन पल्ले हमको उत्कृष्ट देखना है। उत्कृष्ट के लिए उसमें होता है कि नहीं वो बात अलग, उत्कृष्ट घटित करने के लिए तीन पल्ले में से और बढ़ाना है। तीन पल्ले के बाद में बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो तो देव में चला जाता है, तो उसके पहले। तो पहले हमने देखा था उत्कृष्ट अनुभाग के वाला जी वहां नहीं जाएगा, तो उसने कुछ वहाँ अवस्थित कर दिया है, पहले से उसने अवस्थित कर दिया।
कुछ ज्यादा बताया वो तो बहुत पता
है। हाँ अंतर्मूर्त होगा, अंतर्मूर्त होगा क्योंकि मिथ्या दृष्टि है ना।
हाँ।
मिथ्या दृष्टि का अवस्थित काल अंतर्मूर्त है। अब ये मिथ्या भोग भूमि में आने के पहले अंतर्मूर्त तक वो होना चाहिए तिर्यंच।
हाँ।
अंतर्मूर्त तक अवस्थित रहा, भोग भूमि में उत्पन्न हुआ तो तीन पल्ले तक अवस्थित रहा मिथ्या दृष्टि होते हुए भी, और बाद में देव में चला गया। देखो यहाँ विशेषात पढ़ेंगे तो ख्याल में आएगा। 96 पेज का हम पहले विशेषार्थ थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर अपने विशेष पर आएंगे फिर बाद में। कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच देव कुरु उत्तर कुरु में जन्म लेकर, ये देव कुरु उत्तर कुरु किसको कहते हैं? हाँ उत्तम भूमि को कहते हैं। जन्म लेकर और तीन पल्य तक रहकर मरकर देव हो गया, उसके अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पल्ले होता है क्योंकि भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के जन्म लेने के कुछ समय पहले से उत्कृष्ट अनुभाग का घात होकर अवस्थित पना संभव है। उत्कृष्ट अनुभाग के साथ यहाँ जन्म नहीं लेता है, उसके पहले उत्कृष्ट अनुभाग का घात करके अवस्थित कर दिया उसने और बाद में यहाँ जन्म लिया। अब फिर आते हैं अपने मूल पर। कुछ अधिक में अंतर्मूर्त अधिक हो सकता है, अंतर्मूर्त अधिक तीन पल गया। इसी प्रकार पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याप्त और पंचेंद्रिय तिर्यंच योनिनी में जानना चाहिए, क्योंकि उनमें भी ये तीन पल्ले का घटित होता है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में भुजगार और अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय है। पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में भुजगार किसको होगा? एकेंद्रिय से जघन्य अनुभाग के साथ आया है, कम अनुभाग के साथ आया है, और यहाँ उसने तिर्यंच पंचेंद्रिय पर्याप्त के योग्य अनुभाग का बंद किया, तो भुजगार और अवस्थित का जघन्य काल एक समय।
ये तो विकलेंद्रिय से भी ला सकते
हैं। कम अनुभाग के साथ आया है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, यानी अंतर्मूर्त तक वो लगातार अधिक 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 बांधता रहेगा। ऐसा जो लिया ना, भुजगार का अंतर्मूर्त तभी होगा जो जितना बांधा है उससे और अधिक लगातार बांधता रहेगा। अवस्थित भी अंतर्मूर्त तक अवस्थित रह सकता है। अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अल्पतर कैसा होगा? जो पंचेंद्रिय संगी पंचेंद्रिय में से अधिक अनुभाग के साथ आया है, वहाँ उसका उत्कृष्ट काल एक अंतर्मूर्त था, उसमें से अब इसमें जो कोई है वो यहाँ एक समय के लिए रहता है या अधिक समय के लिए, परंतु जब उसका उत्कृष्ट से अनुत्कृष्ट हो जाएगा तो उसका अल्पतर होगा एक समय के लिए। इसी प्रकार मनुष्य अपर्याप्तकों में जानना चाहिए। मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में भुजगार उत्कृष्ट नहीं अधिक, हाँ, परंतु यहाँ लगातार बांधने की बात है। लगातार बांधने की अपेक्षा आप अल्पतर की बात कर रहे हैं क्या अधिक की बात कर रहे? भुजगार तो उन्होंने बताया अंतर्मूर्त है। देखो फिर पढ़ेंगे। पर्याप्त में जो लाया वो अल्पतर के लिए लाया, नहीं समझे? अल्पतर कब होगा? अधिक अनुभाग से आया है और वहां तो उसका जो काल है कांडक की बात नहीं है। वहां पर अंतर्मूर्त के बाद तो अल्पतर हो ही जाता है।
पर अल्पतर तो बंद की अपेक्षा होगा सब तक।
देखो अवस्थित भी कितने काल तक रहता है अंतर्मूर्त, ये तो मिथ्या दृष्टि है। तो अवस्थित वाला अंतर्मूर्त उसका कंप्लीट हुआ तो क्या होगा? भुजगार होगा या अल्पतर होगा? यहाँ अल्पतर को लेना है तो अल्पतर हुआ, तो एक समय के लिए अल्पतर हुआ, क्या दूसरे समय फिर अल्प होगा?
नहीं
हो सकता, इसलिए अल्पतर में एक समय लिया, भुजगार में अंतर्मूर्त लिया, क्योंकि अंतर्मूर्त लगातार अधिक बंद कर सकता है अनुभाग का। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्तकों में जानना चाहिए।
कंडक की अपेक्षा नहीं ले सकते?
नहीं, ऐसा भी वो जब अवस्थित रहे में मिथ्या दृष्टि के अवस्थित रहने का काल अंतर्मूर्त ही है मैक्सिमम, उसके बाद अल्पतर या भुजगार हो ही जाता है, इसलिए वो जो अनुभाग कांडक घात वाले जो है ना विशुद्धि के वाले वो यहाँ नहीं है। यहाँ जो कोई यथा योग्य उसका प्रोसेस होता है उसको कांडक कहेंगे या जो कुछ कहेंगे। इसी प्रकार मनुष्य पर्याप्त को में जानना चाहिए। मनुष्य मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों में गुजगार और अल्पतर विभक्ति का जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, जैसे हमने ओघ में देखा था। अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय अब मनुष्यों में घटित करना है। ओघ में हमने अवस्थित का उत्कृष्ट काल कैसे लिया था, पल्ले का असंख्यातवा भाग, फिर दो बार 66 सागर और फिर 31 सागर। अब मनुष्य के रहते हुए चाहिए तो अवस्थित का जघन्य एक समय और उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्ले। मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्ले, मनुष्य में लगातार रहने का काल। तो यहाँ अवस्थित में उसको क्यों नहीं लिया? हाँ दोषी साहब आप कहेंगे, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से मनुष्य, मनुष्य से ऐसा रखो ना ज्यादा टाइम, और फिर अवस्थित कर दो उसमें। मेरा प्रश्न ऐसा है, मनुष्य में रहने का उत्कृष्ट काल कितना है? पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य, तो लगातार उतने काल तक अवस्थित क्यों नहीं लिया? हाँ तीन पल्ले बहुभूमि को लिया ना, यहाँ पर यहाँ तीन पल्ले में लिया है, पर उसके पहले पूर्व कोटि का त्रिभाग ही लिया, ज्यादा नहीं लिया। तो ज्यादा क्यों नहीं लिया? देखो यहाँ ऐसा है कि सम्यक तो के साथ मनुष्य 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 कितने काल तक रहेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि मनुष्य जो है, सम्यक तो होने के पहले इन केस मनुष्यायु बांधी हो तो ही मनुष्य में जाएगा, वो भी भोगभूमि के, अन्यथा मनुष्य में से मनुष्य वो तो मिथ्या दृष्टि। इतना जो हमने देखा ना पूर्व कोटि पृथक्त्व अधिक तीन पल्य, इतना लंबा काल किसके होगा? मिथ्या दृष्टि के होगा। ये तो फेरे मारते ना, ये अब सात भव तक यही पति मिल जाए जन्मो जन्मे, वो जन्मो जन्मे मनुष्य ही रहना चाहता है, तो क्या रहना चाहता है? मिथ्या दृष्टि। हाँ स्त्री यही पति मिल जाए, फिर देव में भी मिलेगा ना, तो फिर वो स्त्री को स्त्री रहना पड़ेगा, मिथ्या दृष्टि रहना पड़ेगा। ये सारे कुछ कहने की बात है, और वो लोग मानते भी ऐसे अन्य मते।
तो भी साथ हो बताएं तो उसपे कुछ लॉजिक है कि देखियो आठ भव ही हो सकते हैं।
अच्छा लॉजिक है मनुष्य के आठ भव क्योंकि सात से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करना चाहते हाँ देखो
नहीं वहाँ पे भी कुछ जैनिज्म ने अभ्यास वाले जो ने निकाला होगा ना साथ को,
कुछ कहीं से कुछ पकड़ लेते हैं और उसमें डालते हैं। चलो देखो क्या कहते हैं, यहाँ कितना लिया मनुष्य का, देखो अवस्थित का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्य। हमने देखा था लगातार अवस्थित किसके रह सकता है? सम्यक दृष्टि के रह सकता है। तो उसको मनुष्यायु का पहले बंद करना चाहिए, तभी तो मनुष्य सम्यक दृष्टि के रहते हुए वो आयु बंधने के पहले उसने मनुष्यायु का बंद किया, तो अर्लीएस्ट कब कर सकता है?
वन थर्ड
बाकी है तभी, और पहली वाली आयु भी बड़ी लेनी है तो पूर्व कोटि के लिए, पूर्व कोटि का वन थर्ड बाकी है तब उसने मनुष्यायु का बंद किया, बराबर। अब बंद करने के बाद उसने सम्यक तो प्राप्त किया, तो सम्यक तो प्राप्त किया तो उसके उतने के उतना अवस्थित रहा, बाद में जाकर भोगभूमि में उत्पन्न हुआ तीन पल्ले वाले, तो वहां भी उतना का उतना रहा उसका, तो इसलिए पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्ले लिया। ख्याल में नहीं उनका लॉजिक। अब कहते इतनी विशेषता है कि मनुष्यनी में, तो मनुष्यनी में इतना लेना कि नहीं लेना? क्यों नहीं लेना? क्या मनुष्यनी सम्यक तो प्राप्त नहीं कर सकती? हाँ पुरुष हो जाएगी, मनुष्य हो सकती है, वो भी मनुष्य का आयु बांध सकती है और फिर बाद में सम्यक तो प्राप्त किया, पर सम्यक तो प्राप्त करने के लिए भोग भूमि में जो जन्म होगा तो उसको मनुष्य नहीं कहेंगे, अभी वो मनुष्य कहेंगे, उसको पर्याप्त मनुष्य कहेंगे, मार्गणा बदल जाएगी ना, मनुष्यनी वाली मार्गणा नहीं रहेगी, तो मनुष्यनी हमको चाहिए और अधिक से अधिक अवस्थित चाहिए। मनुष्यनी रहते हुए वो उसको मनुष्यनी नहीं कहेंगे फिर। हाँ क्या
ये तो मिथ्या दृष्टि जीवी लेना है, अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्य।
हाँ तो यहाँ कैसे लेना, इतनी विशेषता है कि मनुष्यनियों में अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्य है। अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्य ऐसा लेना है जैसे तीरंचों में घटित किया था कि यहाँ मनुष्य नहीं है, अब उसने भोग भूमि की आयु बांधी है और वहां की भी स्त्री होने वाली है, अब यहाँ समय दृष्टि नहीं लेना क्योंकि भोग भूमि तो अवस्थित रहता है मिथ्या दृष्टि को भी, तो यहाँ वहां जाने के पहले मरण के एक अंतर्मूर्त पहले उसने अवस्थित कर दिया और एक अंतर्मूर्त अवस्थित रहकर भोग भूमि में उत्पन्न हुई मनुष्य नहीं बनकर और वहां भी तीन पल्ले तक अवस्थित रहा और बाद में तो भुवनवासी आदि में चली गई जो कुछ है। हाँ भोग भूमि में जाने के पहले मनुष्य नहीं थी, भाव से लेना, जब मनुष्य नहीं कहते हैं द्रव्य से दोनों भी हो सकते स्त्री या पुरुष, भाव से ही लेना उसको क्योंकि हम मनुष्य नहीं कहते तो उसमें तो 14 गुण स्थान पॉसिबल है, जब मनुष्य नहीं कहते तो भाव की ही बात वहां लेना है और जब द्रव्य वेद की बात आएगी तो उसमें गुणस्थान 5वें से ऊपर नहीं जाएगा। भोग भूमि में, हाँ भोग भूमि में द्रव्य वेद और भाव वेद समान होता है, देवों में भी जो स्त्रियां हैं उन्हीं को स्त्री वेद है, जो पुरुष है उनको पुरुष वेद ही है, मनुष्य और तिर्यंचों में द्रव्य और भाव वेद में समानता भी हो सकती है असमानता भी हो सकती है, ये यहीं पर पॉसिबल है। अंतर्मूर्त देखो यहाँ मनुष्य नहीं लेना है, पहले भी मनुष्य नहीं थी और वहां भी मनुष्य नहीं है, वहां की मनुष्य नहीं तो द्रव्य से स्त्री है भाव से भी स्त्री है, पर यहाँ वो भाव से, हाँ भाव से ही स्त्री लेनी है, द्रव्य से कुछ भी हो सकती है। अब विशेषार्थ, पहले तिर्यंचों की बात जो हमने देखी थी उसका विशेषार्थ देख के फिर मनुष्य की बात करेंगे। कोई मिथ्या दृष्टि तिर्यंच देवकुरु उत्तर कुरु में जन्म लेकर और तीन पल्ले तक रहकर मरकर देव हो गया, उसके अवस्थित विभक्ति का कुछ काल, सॉरी अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल कुछ अधिक तीन पल्ले होता है क्योंकि भोग भूमि में उत्पन्न होने वाले जीव के जन्म लेने के कुछ समय पहले से उत्कृष्ट अनुभाग का घात होकर अवस्थित पना संभव है। पहले अधिक था उसने घात किया फिर लगातार उतना रहा और अंतर्मूर्त में मरकर इसमें आया, यहाँ तिर्यंच को लिया वैसा ही मनुष्य ने में लेना हमने। अपर्याप्त के सिवा तीनों प्रकार के मनुष्यों में अल्पतर विभक्ति का उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, क्यों क्षपणा पॉसिबल है इसमें, क्षपक श्रेणी होती है, क्योंकि यहाँ क्षपक श्रेणी होने से अनुभाग का प्रति समय घात होना संभव है तथा अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल पूर्व कोटि का त्रिभाग अधिक तीन पल्य है, क्योंकि कोई मिथ्या दृष्टि मनुष्य एक पूर्व कोटि का त्रिभाग शेष रहने पर मनुष्यायु का बंध करके ये मिथ्या दृष्टि क्यों लिया, समय दृष्टि होता तो देवायु का बंध करता, इसलिए मिथ्या दृष्टि लिया, सम्यक्त को ग्रहण करके आयु का बंद किया, सम्यक्त को ग्रहण कर दिया उसने दर्शन मुनि का क्षपण करके, क्योंकि क्षाई होना आवश्यक है, उसके बिना वो भोगभूमि का नहीं होगा,
मनुष्य में घटित नहीं होगा,
नहीं होगा, इसीलिए उसमें अंतर्मूर्त घटित किया। मनुष्य में तो तिर्यंज जैसा घटित करेंगे, यहाँ जो है क्षपणा कर दी उसने। सम्यक्त्व के साथ पूर्व कोटि का देशों ने त्रिभाग बिताकर, देशों ने कहा ना आयु बंद का काल उसमें से घटा देना है देशों ने, और फिर क्षपणा का भी घटाना है, क्योंकि क्षपणा के काल में उसने अनुभाग को घटाया था और तब जाके अभी उसका अवस्थित हुआ है। उत्तर पूर्व में मरकर मनुष्य हुआ और वहां तीन पल्ले रहकर मरकर देव हो गया। कहाँ का देव होगा यह? हाँ, सौधर्म ईशान ही होगा। भोग भूमि के सम्यक दृष्टि सौधर्म ईशान में जाते हैं और भोग भूमि के मिथ्या दृष्टि बहुनत्रिक में जाते हैं। तो उस मनुष्य के अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल पूर्वोक्त तो होता है, किंतु मनुष्यनी के अंतर्मूर्त अधिक तीन पल्ले काल होता है, जैसा कि तिर्यंच में बतलाया है। शेष कथन सुगम है, क्योंकि वो मनुष्यनी भी शायिक तो हो सकती है, परंतु बाद में उसकी मार्गणा बदल जाएगी, उसको मनुष्यनी नहीं कहेंगे। देवों में अरविंद भाई ने जो पूछा था, पर्याप्त मनुष्यों में भी उसको अंतर्भाव हो जाता है, परंतु पर्याप्त मनुष्य अगर हम कहते पहले भी पर्याप्त मनुष्य था, बाद में भी पर्याप्त मनुष्य, तो बात अलग थी। अब यहाँ मार्गणा स्पेसिफिकली बतानी ना मनुष्यनी, इसलिए मनुष्यनी को ही यहाँ लेना है। तो जिसने सम्यक तो प्राप्त किया है वो बाद के भव में मनुष्यनी नहीं रहेगी, इसको मनुष्य कहेंगे उसको, यदि पहले मनुष्यायु का बंध किया है तो। देवों में भुजगार विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अंतर्मूर्त है, ये हमने सब जगह देखा था, ओघ में भी ऐसा ही देखा था। अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है, जैसे नारकियों में देखा था, अनुभाग कांडक घात के समय ही अल्पतर होगा एक समय के लिए। अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर है। जिस अनुभाग के साथ आया है, बीच में कोई क्रिया नहीं करता, उतना का उतना रहेगा, तो उसको कहेंगे संपूर्ण 33 सागर। जैसे हम कहेंगे क्षाई के साथ आया है, तो उसमें तो कुछ क्रिया ही नहीं ना, अभी उतना का उतना अनुभाग रहेगा उसका। इसी प्रकार भवनवासी से लेकर सहस्रार स्वर्गत पर्यंत जानना चाहिए, इतनी विशेषता है। उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहना चाहिए, आनंद से स्वर्ग से लेकर सर्वार सिद्धि पर्यंत अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त है और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। ये अवस्थित का जघन्य काल कैसे होगा?
अंतर्मूर्त के पश्चात तो उसका अल्पतर नहीं तो
वहां तो भुजगार तो होगा ही नहीं, तो अवस्थित रहा फिर अल्पतर हुआ, ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि अनुभाग कांडक घात होते रहेंगे, तो अंतर्मूर्त तो अवस्थित रहेगा, बाद में वो घटेगा। और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण है। देखो, यह भवनवासी से में जो अपनी अपनी स्थिति प्रमाण कहा था, भवनवासी में तो उत्पन्न होने के बाद सम्यक तो प्राप्त होगा, और सौधर्म से लेकर तो सम्यक तो के साथ उत्पन्न हो सकता है, तो उसमें थोड़ा अंतर्मुख घटाना पड़ेगा। हाँ, इस प्रकार विचार करके इस काल को अनाहारी पर्यंत ले जाना चाहिए, नहीं सभी मार्गणाओं में घटित करना चाहिए। विशेषार्थ, सामान्य देवों में अवस्थित विभक्ति का उत्कृष्ट काल संपूर्ण 33 सागर होता है, क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि की उत्कृष्ट स्थिति 33 सागर है। आनतादिक में तथा ऊपर के विमानों में भुजगार विभक्ति नहीं होती। अल्पतर विभक्ति का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय होता है, क्योंकि अल्पतर विभक्ति क्रिया के समय यानी अनुभाग कांडक के समय होती है, तथा अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी स्थिति प्रमाण होता है। यहाँ आनतादिक में कांडक घात करने पर उसके अंत में अल्पतर विभक्ति प्राप्त होती है, इसलिए उसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। किसका? अल्पतर का काल। अल्पतर का काल एक समय, क्योंकि कांडक घात के अंतिम समय में अल्पतर हो जाता है, तथा कांडक घात के समय अवस्थित विभक्ति का जघन्य काल अंतर्मूर्त प्राप्त होता है। जब तक कांडक का प्रोसेस चल रहा है तब तक कुछ न कुछ परमाणु उस अनुभाग के साथ है, तो हम कहेंगे अवस्थित है, और वो अंतर्मूर्त पूरा हुआ ना अनुभाग कांडक का अंतर्मूर्त, तो एकदम ड्रॉप हो गया, अल्पतर हो गया। तो अवस्थित का जघन्य काल एक अंतर्मूर्त, इसलिए इसका जघन्य काल अंतर्मूर्त कहा। और देवों के जीवन भर क्रिया रहित होने पर ये क्रिया ने अनंतानुबंधी की विसंजना है या सम्यक तो प्राप्ति जो कुछ है। अब यहाँ अनंत की बात है तो उसमें तो समय दृष्टि तो समय दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि है, तो उनके भुजगार तो नहीं होगा, परंतु यहाँ क्रिया रहित होंगे तो ही अवस्थित व्यक्ति का उत्कृष्ट काल प्राप्त होता है, इसलिए इसका उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहा। अन्य मार्गणाओं में इसी प्रकार अर्थात गति मार्गणा के अनुसार विचार कर काल घटित कर लेना चाहिए। इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ। यही रुकते अभी हम। जावाणी के ज्ञान नये सूझे लो कालो सोवाणी मस्तक नो सदा देत हो। दोषी साहब।